नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में अपने कार्यों को करते हुए आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं अपने सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ और विशेष करके उनका जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको फिर से स्मरण दिला दूं कि इन दिनों हम एज्रा की पुस्तक, जो बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों में से है, सीख रहे हैं और उसके वचनों में से मनन चिंतन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि इसराइली जो बंधुआई में थे वापस यरूशलेम में आए और उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने का कार्य आरंभ किया, परंतु वहां पर कुछ विरोधी लोग उत्पन्न हुए और उन्होंने उनके कार्यों को करने से उन्हें मना किया और रुकावटें डाली। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मंदिर का पुनरुद्वार पूरा हुआ और समर्पण किया गया। लेकिन इससे पहले आइए आज हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है, ताकि हम दूर दराज में बैठकर आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, अशांति में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, यहां तक कि अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। पिताजी, आप प्रत्येक को अपनी आशीष दें, जिस प्रकार से आपने मंदिर के पुनरुद्वार कार्य को पूरा किया, उनके जीवन में भी उस कार्य को पूरा करें। आज हम सबको अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि वैरियों के विरोध के कारण मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य रुक गया था। उन्होंने राजा शयर्स को पत्र लिखकर यरूशलेम वासियों की झूठी शिकायत की। उन्होंने यरूशलेम को विद्रोही और अनाचारी नगर कहा था। शयर्स ने इतिहास पढ़ा तो वैरियों की बात सच निकली। उन्होंने अपने राज्य के अंत समय में 3 बार राजा से विद्रोह किया था और अंत में नबूकदनेस्सर ने आकर नगर को ध्वस्त किया और उन्हें अर्थात नगरवासियों को बंदी बनाकर ले गया। उन्होंने इतिहास में उनका विद्रोह तो नहीं देखा, परंतु यरूशलेम के पुनः निर्माण की कुसरो की आज्ञा नहीं देखी। मेरे प्रियो, वह समय घोर निराशा का समय था। उन्होंने मंदिर निर्माण रोका ही नहीं, उसके परित्याग की परीक्षा में भी पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यही समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। मेरे मित्रों, आज भी अनेकों की प्रवृत्ति यही है कि समस्या का समाधान दूर भाग जाने में है। यह सदा सच नहीं होता है। आप समस्याओं से बचकर भाग नहीं सकते। सौभाग्य से वे भागे नहीं। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं हगय और जकरिया को खड़ा किया। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा कि आप समस्याओं से भागो मत, परंतु समस्याओं का सामना करो। किसी ने ऐसा भी कहा कि समस्याओं को अपने सर के ऊपर चढ़ने मत दो, परंतु समस्याओं के सर पर तुम चढ़ो। जी हाँ, यह बहुत ही अच्छी बात है। स्पष्ट कहूं तो हमें हगै और जकरिया, दानियल और एस्तेर भी की पुस्तकें भी एज्रा और नहेमिया के साथ पढ़ना चाहिए। पांचों पुस्तकें समकालीन हैं और उनका अध्ययन एक साथ करें तो हमें लाभ होगा। तो आइए देखें एज्रा की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, तब हगै नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। मेरे मित्रों, इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने बुलाया कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करें। वे जानते थे कि फारस के राजा कुसरो ने यह राजाज्ञा निकाली थी जिसमें उन्हें यरूशलेम के पुनः निर्माण की अनुमति दी गई थी। वे यह भी जानते थे कि नगर का पुनः निर्माण परमेश्वर की इच्छा में और उचित में किया जा रहा था। प्रियो, हगै उन्हें परमेश्वर का दूत कहता है। जी हाँ, दोनों भविष्यवक्ताओं में समानता नहीं थी। उनमें से केवल एक ही समानता थी कि वे दोनों परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे। हगै के पांव धरती पर रहते थे। वह दृढ़ एवं स्थिर मनुष्य था। वह विश्वास योग्य मनुष्य था। वह तथ्यों की खोज में रहता था। वह अपने साथ एक बांस रखता था और प्रत्येक स्थान को नापता था। सब कुछ पक्का होना था और एक बांस चौड़ा होना था। तोड़फोड़ या रौंदा जाना स्वीकार्य नहीं था। मेरे प्रियो, हगै ऐसा मनुष्य था कि वह बात की जड़ तक जाता था। उसने राष्ट्र के विवेक को झिझोड़ा था और आज भी झिझोड़ता है। उसके संदेश दिल को गहराई में छूते थे। उसके जैसे लोग ख्याति प्राप्त नहीं करते थे और न ही आज करते हैं। मेरे मित्रों, जकरिया सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व रखता था। उसका मस्तिष्क बादलों में रहता था। उसे अद्भुत दर्शन दिखाई देते थे और उनके अनुसार उसका संदेश भी होता था। वह मनुष्यों की भावनाओं को छू लेता था, उनके मन को कायल करता था और इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने राष्ट्र के मन और विवेक को छुआ। जी हाँ, स्पष्ट है कि हगै को अगुआ माना जाता था, परंतु दोनों ही का उद्देश्य था कि इसराइलियों को मंदिर के पुनः निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः इस समय हगै और जकरिया को पढ़ना अति लाभकारी होगा। जी हाँ, इज़रा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, तब शालतियल का पुत्र जरुबाबेल और योसादाक का पुत्र येशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का ततनय नामक अधिपति और शतबोर्जनय अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, जब उन्होंने मंदिर के पुनः निर्माण का काम फिर से आरंभ किया तो उनके वैरियों अर्थात शत्रुओं को समाचार मिला। लिखा है कि सामरिया का फारसी अधिपति ततनय और अधिकारी शतबोर्जनय अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचे और पूछा कि किसकी आज्ञा से वे पुनः निर्माण का कार्य कर रहे थे। उनका उत्तर वास्तव में सही उत्तर नहीं था, क्योंकि ततनय और उसके साथ ही उनके वैरी थे। वे सांसारिक मनुष्य थे। यहूदियों को सुअर के सामने मोती नहीं डालना था। यदि वे कहते कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है तो क्या वे उनकी समझ पाते? जी नहीं। परंतु भजन संहिता 25 उसके 14 पद में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और कोई नहीं। पौलुस ने कुरिन्थ की कलिसिया को लिखा, 1 कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जी हाँ, उन्होंने नीति वचन 26 उसके 4 का उल्लंघन किया और मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दिया। सच तो यह है कि उन्होंने प्रतिउत्तर में एक प्रश्न पूछा। आइए पढ़ें इज़रा 5 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम हैं? दूसरे शब्दों में, हमने नाम उस सूची में नहीं देखा जो हमें दी गई थी। यदि आप निर्माण कर्मियों के साथी हैं तो हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता ही होगी। अब क्योंकि आपके नाम सूची में नहीं है इसलिए हम आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। मेरे प्रियो, मैं इसे यह कहने का बहुत अच्छा तरीका मानता हूं, यह तुम्हारा काम नहीं है, हमसे पूछने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा उत्तर उन्हें संकट में डाल सकता था, परंतु देखिए वास्तव में आगे क्या हुआ। इज़रा 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला तब तक उन्होंने इनको न रोका। प्रियो ध्यान दीजिए, यहां सबसे अद्भुत बात यह है कि आप परमेश्वर पर निर्भर कर सकते हैं कि वह अपने लोगों की सुधि लेता है। जी हां, अब राजा के पास एक और पत्र पहुंचता है। इस समय दारा राजा है। इससे स्पष्ट है कि 7 वर्ष अब बीत गए हैं। इज़रा 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तत्नय और शतबोर्जनय और महानद के इस पार के उनके सहयोगियों अपर्श कर्मियों ने राजा दारा के पास भेजी उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। जी हाँ, यह एक और पत्र है जो बैरियों ने स्पीड पोस्ट से भेजा था, यूं कहें कि कोरियर से भेजा था। मेरे विचार में वह विशेष डाक सेवा थी। इज़रा 5 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, पत्र की विषय वस्तु देखिए कैसी है। हम जासूसी करने तो गए नहीं थे, परंतु पड़ोसी होने के नाते हमने वहां यूं ही एक चक्कर लगाया और जो देखा वह यह है जो हम आपको लिखते हैं। इज़रा 5 अध्याय 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए हमने उन पुरनियों से यूं पूछा, यह भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी? और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। मेरे प्रियो, भविष्यद् वक्ताओं हग्गै और जकर्याह का नाम उन्हें नहीं बताया गया था। तब आगे हम देखते हैं इज़रा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था उसी को हम बना रहे हैं। वे बंधुआई का इतिहास सुनाते हैं, अर्थात 70 वर्ष पूर्व का, जो उन्होंने पहले मंदिर को देखा था। इज़रा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया तब उसने उन्हें बेबीलोन के कस्ती राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु बेबीलोन के राजा कुसरो के पहले वर्ष में उसी कुसरो राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। मेरे प्रियो, वे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि राजा कुसरो ने उन्हें मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा दी थी। उसने मंदिर के पात्र भी उनके साथ भेज दिए थे। तब क्या होता है? इज़रा की पुस्तक 5 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबुकदनेज़र यरूशलेम के मंदिर में से निकालकर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रो ने बेबीलोन के मंदिर में से निकलवाकर शेषबसर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। पत्र के अंत में यही निवेदन था। इज़रा की पुस्तक 5:17 में हम आगे पढ़ते हैं, अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रो ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं, तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। ध्यान दीजिए, उनके वैरियों को विश्वास नहीं था कि कुस्रो ने ऐसी आज्ञा दी थी, परंतु पत्र में उन्होंने लिखा कि यहूदियों का कहना है कि मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा कुस्रो ने उन्हें दी है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि पता लगाया जाए कि कभी ऐसी आज्ञा दी गई है या ऐसे ही बकवास है। उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसी कोई भी राजाज्ञा नहीं थी और ये लोग अपनी इच्छा से ही मंदिर का पुनः निर्माण कर रहे हैं ताकि हम उनको रोक सकें। हम आगे देखते हैं कुस्रो की राजाज्ञा की पुष्टि। परमेश्वर की प्रजा और स्थिति और दशा के विषय बहुत कुछ कहा गया है। ये दोनों बातें ही सर्वथा भिन्न है। स्थिति के संदर्भ में तो यहूदी वही थे जहां परमेश्वर उन्हें रखना चाहता था, परंतु उनकी दशा अच्छी नहीं थी। वे हतोत्साह थे, वे तो सब कुछ छोड़कर शांत बैठ जाना चाहते थे, जैसा कि हम सब भी कई बार करना चाहते हैं। अतः परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भविष्यद्वक्ता भेजे। जी हाँ, आज ऐसा प्रतीत होता है कि आज परमेश्वर के लोगों ने स्थिति और दशा को एक बना दिया है। यदि आप मसीह में हैं तो सुरक्षित हैं। आपकी स्थिति तो अच्छी है, परंतु आपकी दशा कैसी है? क्या आप हतोत्साहित हैं? क्या आप उद्धार के आश्वासन से मसीह में अवस्थित हैं परंतु त्यागने का विचार कर रहे हैं? क्या आप इससे अलग हो जाना चाहते हैं? यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो मेरे मित्रों, आपकी स्थिति चाहे अच्छी हो, आपकी दशा अच्छी नहीं है। इज़रा की पुस्तक में यहूदियों की दशा ऐसी ही थी। अब मनोहर बात तो यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उसकी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि खोज में कुछ निकला है और उनके वैरी मुंह की खाएंगे। उन्हें अब चुप रहना था। देखिए क्या होता है। इज़रा नबी की पुस्तक 6:1 में लिखा है, तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई। जी हाँ, उन्होंने पुराने दस्तावेजों को खोजा जिन पर धूल जम चुके थे। तब हम देखते हैं इज़रा की पुस्तक 6:2-3 में, मांदे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था, राजा कुस्रो के पहले वर्ष में उसी कुस्रो राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी बताई गई है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ेंगे इज़रा की पुस्तक 6:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबुकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। मेरे मित्रों, सब कुछ उनमें लिखा हुआ था। दारा ने उन दस्तावेजों को खोजा। यदि बैरी उसका उल्लेख नहीं करते तो दारा को कभी भी पता नहीं चलता कि कुस्रो ने ऐसी आज्ञा दी थी। वह उनके वैरियों की बहुत बड़ी चूक थी। अब हम देखते हैं राजा दारा ततने को संदेश भेजता है, इज़रा की पुस्तक 6:6-7 में। अब हे महानद के पार के अधिपति ततने, हे शतबोर्जने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपार्श कर्मियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के इस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। जी हाँ, ततने एक अधिपति था और किसी महत्वपूर्ण काम से वहां नियुक्त किया गया था। उसने सोचा कि वह मंदिर का पुनः निर्माण रुकवा देगा, परंतु जब कुसरो की राजाज्ञा का प्रकाशन हुआ तब राजा दारा को ये बोध हुआ कि वह मादी फारसियों का कानून था और उसे न तो बदला जा सकता था और न ही निरस्त किया जा सकता था। अतः उसने अतिरिक्त राजाज्ञा निकाली। जी हाँ, इज़रा की पुस्तक 6:8 में हम पढ़ते हैं, वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा वर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। मेरे मित्रों, उसने लिखा कि मंदिर का पुनः निर्माण बाधित न किया जाए, वरन उसमें सहयोग दिया जाए। जो कर नदी पार के क्षेत्रों से उठाया जाता था उसे फारस भेजने की अपेक्षा मंदिर एवं यरूशलेम के निर्माण कार्य में लगाया जाए। परमेश्वर मनुष्य के रोष को उसकी स्तुति में बदल देता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जब वह चाहता है वह अपनी महिमा लेता है। इज़रा की पुस्तक 6:9-10 में हम पढ़ते हैं, क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। मेरे प्रियो, यह कैसी राजाज्ञा थी। उसकी आज्ञा में यह भी स्पष्ट था कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। इज़रा की पुस्तक 6:11 में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। मेरे मित्रों, यहाँ आप हगै और जकर्याह की पुस्तकों को पढ़ें तो आप रोमांचित हो उठेंगे। वे पुस्तकें महान वृत्ति हैं। हम उन्हें छोटे भविष्यद्वक्ता तो कहते हैं, परंतु वे बड़ी टीम में खेल रहे हैं। इज़रा 6:14 में लिखा है, तब यहूदी पुरनिये हगै नबी और इद्दो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरो, दारा और अर्थशत्र के आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। जी हाँ, हगै और जकर्याह के प्रोत्साहन द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण संपन्न हुआ। मंदिर का पुनः निर्माण संपन्न हुआ और समर्पण भी किया गया। हम इज़रा की पुस्तक 6:15-16 में पढ़ते हैं, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेविये और अन्य जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। मित्रों ध्यान दीजिए, इसराइल और अन्य, ये अन्य कौन थे? वही जो लिखा है, ये लोग इसराइल के 10 गोत्रों के सदस्य थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये 10 गोत्र खो गए हैं। मेरे मित्रों, वे खोए नहीं हैं। वे अपने भाइयों के साथ यहाँ परमेश्वर के भवन का समर्पण हर्ष के साथ मना रहे हैं। इज़रा की पुस्तक 6:17 में लिखा है, उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। जी हाँ, पाप बलि किसके लिए थी? संपूर्ण इसराइल के लिए। क्या यहूदा और विन्यामिन के गोत्र से ही इसराइली लौटकर आए थे? नहीं, वे बारहों गोत्र से थे। बलि में 12 बकरे थे जो 12 गोत्रों का प्रतीक थे। अब आप यह न कहें कि 10 गोत्र भटक कर इंग्लैंड या अमेरिका पहुंच गए थे, यह सच नहीं है। इस विवरण से स्पष्ट है कि एक भी गोत्र नहीं खोया था। यदि कोई खोया होता तो सब खो जाते, क्योंकि वे सब बंधुआई में एक साथ थे। इसकी पुष्टि आगे भी होगी। तो आइए आगे देखते हैं। फसह का पर्व मनाया गया। इज़रा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याचकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याचकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। वे अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। मेरे प्रियो, मंदिर के समर्पण के 5 सप्ताह बाद फसह का पर्व मनाया गया था। फसह मसीह की मृत्यु का द्योतक है, वह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया था। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे मसीह के मनुष्यत्व के पास एकत्र हुए थे। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह एक प्रतीक है और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का भवन अर्थात मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसे समर्पण भी किया गया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे कार्य जो हमारे जीवन में है हम उसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम अपने से यदि प्रयास करें तो हम नहीं कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर उसे पूर्ण करता है। यदि आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन को उसके निकटता में लाएं और निश्चय जानें कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें एवं बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्रभु ख्रीस्त